ओमज्ञान तिमरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलां श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं साग्रजातां सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगणललिता श्रीविशाखानमिताक्ष। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांसी राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराधेयो भगवान ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलं प्रेमापमर्दो महान श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मदैदं तत्रादरो नापरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरु दीनतारणं। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जन वैष्णवी माताजी को दंडवत प्रणाम कोटि कोटि अभिनंदन। कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से नित्यम भागवत सेवया तो आज की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है इस दास को, तो आप कृपा करें कि हम इस श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम तो अमल पुराण है इस पे कुछ आप वैष्णवों की कृपा से कुछ प्रयास कर सकें इस पे चर्चा करने का। तो आज का जो श्लोक है जैसा कि आप प्रतिदिन सुनते आ रहे हैं स्कंद 7 है और अध्याय 4 है और आज का जो श्लोक संख्या है वो है 20। तो आप जो है मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। एवं इस प्रकार ऐश्वर्यमत्तस्य ऐश्वर्य से मदान रहने वाले का दृप्तस्य अत्यंत गर्वित उच्छास्त्रवर्तिना शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए काल अवधि महान महान व्यतियाय बिता दिया ब्रह्म शापाम प्रतिष्ठित भामरों का शाप उपेयुषा प्राप्त करके एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्य उच्छात्रवर्तिना एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्य उच्छात्रवर्तिना कालो महान व्यतियाय ब्रह्मशापम् उपेयुषा कालो महान व्यतियाय ब्रह्मशापम् उपेयुषा। और इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की। तो अनुवाद इस प्रकार है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रमाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकश्यपु ने काफी समय बिताया, अतएव उसे चार कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रमाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकश्यपु ने काफी समय बिताया, अतः उसे चार कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। शाप तो पहले ही दे दिया था। तो इस अध्याय का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु का आतंक। आतंक पूरे ब्रह्मांड में। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद असुर इतने गर्वीले हो उठे कि उन्होंने प्रमाणिक शास्त्रों में दिए गए नियमों तक का उल्लंघन किया। हिरण्यकश्यपु ने यही किया, जैसा कि भगवद गीता 16.23 में कहा गया है, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति आध्यात्मिक आदेशों की अवज्ञा करता है और स्वेच्छा से कर्म करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखी और न परम गति प्राप्त हो पाती है। शास्त्र शब्द हमारे कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले के रूप में आया है। हम शास्त्रों में उल्लिखित नियमों तथा विधि विधानों का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि भगवद गीता में बारंबार की गई है। तस्मात् छात्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधोनक्तम कर्म कर्तुम इहारसी। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों द्वारा जाने कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है। ऐसे विधि विधानों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि कर्म करे, जिससे उसका क्रमिक उत्थान हो सके। मनुष्य को ये भगवद गीता 16.24 है, मनुष्य को शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए, किंतु माया इतनी प्रबल है कि जो ही कोई ऐश्वर्यमान बन जाता है, त्यों ही शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने लगता है, किंतु वह जो ही इस तरह उल्लंघन करता है, त्यों ही उसके विनाश के मार्ग में घुस जाता है। तो यहां शिला प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो इस श्लोक को अगर फिर से दोबारा जरा हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो यहां पर आया है कि ऐश्वर्यम मत्तस्य, यानी ऐश्वर्य में मदांध हो गया, ऐश्वर्य में अंधा हो गया, कौन? हिरण्यकश्यपु। और क्या हुआ फिर? फिर उच्च शास्त्रवर्तिना, जब ऐश्वर्य में अंधा हो गया तो उसने शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया, कोई शास्त्र को मैं नहीं मानता। दूसरी बात, पहले तो अंधा हो गया ऐश्वर्य में मदांध, क्रोधांध भी होता है, क्रोध में कोई अंधा हो जाता है, कोई मद में अंधा हो जाता है। तो यहां हिरण्यकश्यपु जो है अभी मद में अंधा हुआ है, क्रोध में आगे चल के अंधा होगा, क्रोधांध भी होगा जब उसका पुत्र उसके सामने आकर के भगवान की बात करेगा, तब क्रोधांध होगा। तो अभी मदांध है, ऐश्वर्य में फूला हुआ है। दृप्तस्य, दृप्तस्य का मतलब होता है अत्यंत गर्वित है, और शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए कालो महान व्यती आया, बहुत कालो महान का मतलब महान काल को उसने बिता दिया, बहुत बड़े काल को उसने बिता दिया। किस प्रकार से? ऐश्वर्य में मदांध होकर के, मद में अंधा होकर के उसने बहुत महान, यहां बताया है कालो महान व्यती आया। भ्रम शापम उपेयुषः, ब्रह्मा जो है, जो चार प्रतिष्ठित ब्राह्मणों के शाप से उसकी ये गति हो गई। जय विजय थे वैकुंठ लोक में, चार कुमारों के द्वारा शाप मिला और उनका जो है पतन हुआ, और यहां आकर के उनकी ऐसी गति हुई कि एक तो ऐश्वर्य में मदांध हुए और शास्त्रों का उल्लंघन किया, और बहुत समय तक ऐसा जीवन व्यतीत किया। तो यहां एक बात हमको ये समझनी है कि कितना बड़ा समय उसने ऐसा बिताया। तो इस बात को समझने के लिए यहां पर श्रीधर स्वामी जी के टीका में ये लिखा है कि महान काल यानी एक सप्तति युगानी किंचित अधिकानी, एक सप्ततानी युगानी, महान काल मतलब 71 चतुर्युग, यानी के एक जो मन्वंतर का काल होता है उससे भी अधिक समय तक उसने ऐश्वर्य का भोग किया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो उसको वर प्राप्त हुए थे वो उसको चाक्षुष मन्वंतर में प्राप्त हुए थे, ऐसा प्रतीत होता है। और उसका जो वध हुआ है भगवान के द्वारा वो हुआ है वैवस्त मन्वंतर में, जो मन्वंतर अभी चल रहा है, वैवस्त मन्वंतर के प्रारंभ में। तभी महान काल व्यतीत आया, ये जो यहां पर बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि भाई वहां से वर लिया ब्रह्मा जी से और तुरंत जो है उनके जो है प्रहलाद के पुत्र की प्राप्ति हो गई और भगवान आए और कुछ ही समय में जो है उसका वध कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत समय तक उसने ये ऐश्वर्य का भोग किया, कितना? एक मन्वंतर, कालो महान काल, बहुत महान काल उसने जो है बिता दिया। तो इस संसार में, इस जगत में एक तो काल का प्रभाव होता है ना, सबके ऊपर काल का प्रभाव होता है, और एक जो है गुणों का प्रभाव होता है, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हिरण्यकश्यपु का जैसे कि अर्थ अगर आप लगाएंगे तो हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना, कौन सा सोना? गोल्ड धातु सोना हिरण्य, और कश्यपु का क्या अर्थ होता है? हैं? सॉफ्ट बेड, मुलायम बिस्तर। तो हिरण्यकश्यपु का मतलब जिस व्यक्ति को क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। धन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और नरम बिस्तर किसको नहीं चाहिए? वो भी सबको चाहिए। तो सभी हिरण्यकश्यपु हैं कि नहीं? हम छोटे मोटे सही स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। उस समय असुरों की जो संख्या है वो बहुत सीमित होती थी, बहुत कम होते थे, लेकिन शक्ति उनकी बहुत बड़ी होती थी। अब जो हम लोग हैं असुर हिरण्यकश्यपु, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन शक्ति बहुत कम है। लेकिन मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यपु बैठा हो, क्योंकि धन भी चाहिए और संसार में सांसारिक व्यक्तियों की बात कर रहे हैं आप, जैसे वैष्णव की मैं बात नहीं कर रहा, मैं संसार की बात कर रहा हूं। धन भी चाहिए और सॉफ्ट बेड भी चाहिए। तो धन जो है वो रिप्रेजेंट करता है रजोगुण को। धन चाहिए तो आपको क्या होना पड़ेगा? आपको रजोगुण में आना ही पड़ेगा। बगैर रजोगुण में आए हम लोग धन अर्जित नहीं कर सकते। और अगर सॉफ्ट बेड चाहिए, सोना है आराम से, तो फिर तमोगुण में आना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु रजोगुण और तमोगुण का एक मिश्रित जो है व्यक्तित्व था, रजोगुण और तमोगुण। तो इन दोनों से ही वो, और यही संसार में ज्यादातर सभी रजोगुण और तमोगुण पे ही आश्रित हैं। इसीलिए जैसे हम लोग जब शुरू में प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो व्यक्ति का जब इस संसार में आता है तो आते ही तीन गुणों से उसका जो है संपर्क होते ही, और मूल रूप से वो क्या हो जाता है? माया मुक्त हो जाता है। माया मुक्त जीवेरा नहीं स्वतः कृष्णा ज्ञान। तो माया से मुक्त होते ही जीव क्या हो जाता है? अज्ञान में आ जाता है, रजोगुण और तमोगुण में आ जाता है। और सभी व्यक्ति जो है कमोबेश ज्यादातर आसुरी प्रवृत्ति के होते ही हैं, जब तक उसके जीवन में गुरु कृष्ण या कोई साधु आए और शास्त्र आए, तब जाकर के वो इस आसुरी प्रवृत्ति से बाहर निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता। तो महान काल क्या है? महान काल के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि ये महान काल जो उसने व्यतीत किया, ये काल की गणना कैसे शुरू होती है, काल कितना प्रभावशाली है, कितना बलशाली है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। तो काल की गणना कैसे होती है, क्योंकि महान काल इसने व्यतीत किया है ना। तो देखिए, काल की गणना करने के लिए सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, यानी इस पृथ्वी पर या इस जगत में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है, ऐसा अंश जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जो आंखों से दिख नहीं सकता और जो कोई कार्य कर नहीं सकता, ऐसे अंश को कहते हैं परमाणु। परमाणु, और जब दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो फिर बनता है एक अणु, और तीन अणुओं के मिलने से एक बनता है त्रसरेणु। त्रसरेणु, समझिएगा, परमाणु जिसका विभाजन नहीं हो सकता, दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, और तीन अणु मिलकर के एक बनता है त्रसरेणु। तो त्रसरेणु क्या होता है? जब आप देखेंगे कि खिड़की में से, झरोके में से कभी सूर्य की किरणें आती हैं, और सूर्य की किरणों में आपको हल्के हल्के से ऐसे कुछ कण दिखाई देते हैं, खिड़की में से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में हल्के हल्के आपको कण दिखाई देंगे, वो कण होते हैं त्रिश्रेणु। वो कैसे बनते हैं? तीन अणुओं से मिलकर के वो त्रिश्रेणु बनता है, और त्रिश्रेणु जो है उसको पार करने में, त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? एक छोटा सा कण है जो सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है, उसको अगर सूर्य को पार करना है तो उसको कितना समय लगेगा? तो बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि उन तीर उस त्रिश्रेणु को पार करने में उसको जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं, त्रुटि। अब त्रुटि कितना होता है, कितना समय होता है त्रुटि? त्रुटि होता है 8 सेकंड का 13,500वां हिस्सा, 8 सेकंड का 13,500वां हिस्सा त्रुटि कहलाता है। सूर्य को एक त्रिश्रेणु को पार करने में इतना समय लगता है, वो भी काल की गणना में आता है। और उसके बाद में त्रुटि के बाद में इसका 100 गुना जब बढ़ा देते हैं, हम 100 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको कहते हैं वेद। और वेद को पार करने में कितना समय लगता है? उसको लगता है 8 सेकंड का 135वां हिस्सा। उसको 13,500वां हिस्सा लगता है 8 सेकंड का, इसको 135वां हिस्सा लगता है। और उसके बाद में त्रुटि का 100 गुना वेद कहलाता है, और 3 वेद जब मिल जाते हैं तो वो बनता है लव, है ना? कहते हैं ना लव मात्र साधु संगे। लव क्या होता है? लव मात्र नहीं, 3 वेद का 1 लव होता है, यानी लव होता है 8 सेकंड का 45वां हिस्सा। 8 सेकंड का 45वां हिस्सा, ये कैलकुलेशन की बात है। और उसके बाद जो है 8 सेकंड का 15वां हिस्सा कहलाता है निमेश, जैसे पलक झपकते हैं ना, उसको कहते हैं निमेश काल। और 1 क्षण होता है 8 सेकंड का 5वां हिस्सा, और 1 लघु होता है 2 मिनट, और 1 दंड होता है 30 मिनट, और 1 प्रहर होता है 3 घंटे, और 1 दिन होता है 12 घंटे, और 1 रात्रि भी होती है 12 घंटे, और 1 पक्ष होता है 15 दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 पक्ष मिलकर के क्या बनता है? 1 मास मिलता है, और 6 मास मिलकर के क्या बनता है? 1 अयन बनता है, अयन। 6 मास, अयन का मतलब होता है दक्षिणायन और उत्तरायन, ये देवताओं का दिन और देवताओं की रात होती है। दक्षिणायन 6 महीने उनका दिन और 6 महीने उनकी रात। और इस प्रकार से 12 मास जो है 1 वर्ष बनता है, और 12 मास जो है वो देवताओं का 1 दिन होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं, यानी 14 मन्वंतर होते हैं। 1 मन्वंतर कितने युग का होता है? 1 मन्वंतर 71 चतुर्युग, 71 × 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 996। तो 71 चतुर्युग से भी कुछ अधिक समय तक हिरण्यकश्यपु ने ऐश्वर्य को भोगा, इतना समय उसको दिया गया भोगने के लिए। इतने समय तक उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। ही वॉज द फर्स्ट टेररिस्ट इन दिस यूनिवर्स। हिरण्यकश्यपु इस ब्रह्मांड का पहला आतंकवादी, हिरण्यकश्यपु। उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। तो इतना लंबा समय उसको क्यों दिया गया, क्या कारण है उसको इतना लंबा समय जो है पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला है? इसके पीछे किसकी गलती है? वैसे तो ईश्वर सर्वभूताना क्या है, ईश्वर सर्वभूतान ने ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, वो तो ठीक है, वो तो एक मुख्य बात है ही, लेकिन बाह्य रूप से अगर देखें तो इस ब्रह्मांड में जो आतंक फैला है उसके पीछे किसकी गलती नजर आ रही है आपको? हाँ, आतंक फैलाने में गलती किसकी है, किसकी गलती के कारण जो है ब्रह्मांड में आतंक फैला है? किसके? नहीं है, नहीं, गलती किसकी है? देखिए, ब्रह्मा जी की। और हम किस संप्रदाय में, हमें बोलना नहीं चाहिए। तो वैसे बाह्य रूप से देखा जाए तो गलती किसकी है? ब्रह्मा जी की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी शक्तियां हिरण्यकश्यपु को प्रदान करी। जब हिरण्यकश्यपु प्रार्थना कर रहा था ब्रह्मा जी को, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति कर रहा था। ब्रह्मा जी को कैसी स्तुति कर रहा था? कि यू आर द ओनली सुप्रीम कंट्रोलर, आप ही हैं, केवल आप ही हैं। और ब्रह्मा जी ने उस बात को अस्वीकार नहीं किया, ब्रह्मा जी ने उस बात को सुन लिया और सुन करके उसको मनचाहे वर दे दिए। देखिए, यहां एक बात बहुत सीखने को मिलती है। ब्रह्मा जी को यह पदवी किसने दी? भगवान ने। तो जब पदवी मिल जाती है, जब सत्ता मिल जाती है हाथ में, तब कई दफा हम अपने आप को स्वतंत्र समझ लेते हैं। नाउ आई एम द कंट्रोलर, अब मैं, मेरे हाथ में सत्ता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हिरण्यकश्यपु ने उनको जो है उनके लिए तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने उसको मनचाही उसकी वो वरदान दे दी। लेकिन अगर ब्रह्मा जी अपने आप को सुप्रीम नहीं मानते और कहते भाई रुक जा हिरण्यकश्यपु, मेरे को जरा सलाह कर लेने दे, जिसने मेरे को इस सीट पे बिठाया है, तो क्या होता? तो ब्रह्मा जी इस गलती से करने से बच जाते। अगर भगवान के पास पूछते कि भगवान आपने मेरे को सीट पे बिठाया है और ये ब्रह्मा मेरे से ऐसे ऐसे वर मांग रहा है, क्या मैं इसको दे दूं? तो फिर ब्रह्मा के ऊपर कुछ भी उसका जवाबदारी नहीं थी। ऐसे ही जब हम लोगों को सत्ता मिलती है और कई दफा हम उसको स्वीकार करके और फिर हम अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं, तो याद रखिएगा उसका हमारे को कभी भी परिणाम भुगतना पड़ सकता। अगर वही हम अपने उच्च अधिकारी को हम संपर्क करें और उनको बताएं कि भाई हम क्या ये कार्य कर लें, फिर आप इस प्रतिक्रिया से, इस रिएक्शन से आप मुक्त हो जाते हो। फिर आपके वो अधिकारी जाने कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, कैसे लिया, क्या लिया, आप मुक्त हो जाते हो। आज मैं यही चिंतन कर रहा था, मैं आपसे बात करूं, थोड़ी सी अपनी बात करता हूं। मैं बिजनेस कमेटी से, दिल्ली से, व्यापार में हम लोग, मैं पिताजी के साथ बैठा करता था और पिताजी सारे निर्णय मेरे खुद लिया करते थे। तो मेरे को लगता था कि भाई मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरे को पता नहीं कब ये निर्णय लेने देंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और जब कभी वो बाहर चले जाते थे तो मेरे को वो सीट मिल जाती थी जिसपे मैं खुद निर्णय ले सकता था। तो लोग आकर के मेरे को वैसे ही बुलाते थे। हमारे पिताजी को सेठ जी कहते थे, तो जब वो नहीं रहते तो मेरे को सेठ जी बोलते थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। अरे वाह, आज तो मैं सेठ बन गया, सेठ जी सेठ जी, ये सौदा ले लो आप। अरे वाह, चल ले लिया। तो ये नहीं मैं सोचता था कि भाई मैं फोन लगा करके पिताजी से पूछ लूं। क्यों? क्योंकि आज मेरे को सत्ता मिली हुई है, खुद कर लो, डिसीजन ले लो। तो ये गुण जो हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये सारे गुण हमारे को ऊपर से ही आ रहे हैं, ब्रह्मा जी से ही हमारे पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो है उसको वो शक्तियां प्रदान कर दी। तो वैसे तो भगवान ही है सब कारणों के कारण, वो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन बाह्य रूप से अगर देखें तो ब्रह्मा जी ने उनको जो है वो वरदान प्राप्त करा दिए। उस वजह से ये इतना भारी समय आतंक जो है वहां पर पूरे ब्रह्मांड में रहा। अब क्या कारण है कि वो इतने समय तक रहा, क्या कारण है उसका? कि क्या भगवान नहीं जानते थे कि सारे जो हैं संसार में, जगत में लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं हिरण्यकश्यपु के कारण? एक मन्वंतर तक भगवान ने इसको ऐसे कैसे चलने दिया? इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो एक तो ये, तो देवता लोग जल्दी से भगवान के पास गए नहीं, भगवान से प्रार्थना करने जल्दी से नहीं गए। वो खुद ही जो है दूसरे दूसरे देवताओं की आपस में चर्चा कर रहे थे, या किस तरीके से हिरण्यकश्यपु के इस आतंक से बचा जाए, उसी प्रयास में लगे रहे बहुत लंबे समय तक, भगवान के पास नहीं गए जल्दी से। जब हार गए, जब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा, तब देवता लोग जो हैं वो भगवान के पास गए हैं लास्ट में, अंततः। आगे आप पढ़ेंगे आने वाले इस श्लोकों में कि एकदम से वो भगवान के पास नहीं गए। तो जब हम देवताओं की शरण ले लेते हैं, या देवताओं से हम प्रयास करते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, तो रूपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भाई जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ को पकड़ करके अगर आप सागर पार करना चाहते हो, तो वो कार्य है कि भाई आप देवताओं की शरण में जाकर के अपने जो भी समस्या है उसको सुलझा सकते हो। तो दूसरा, जो शास्त्रों का उल्लंघन किया हिरण्यकश्यपु ने, देखो शास्त्र का जब उल्लंघन करते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बचती नहीं है, या तो शास्त्र को स्वीकार करना पड़ेगा या फिर शस्त्र को स्वीकार करना पड़ेगा। चॉइस हमारी है, या तो हम शास्त्र को स्वीकार करें या फिर शस्त्र को स्वीकार करें। तो लातों के भूत बातों से मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते। तो शास्त्र या शस्त्र, दूसरी बात यह आ गई। और तीसरी बात यह आती है कि भाई इतना समय तक भगवान ने इस कार्य को क्यों होने दिया, उस पर भी अगर हम चर्चा करें तो हमको जाना पड़ेगा इस श्लोक के 28वां श्लोक, जिसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि भाई क्या कारण है कि भाई इतना समय जो है 71 चतुर्युग हिरण्यकश्यपु ने इतना ऐश्वर्य भोगा और आतंक मचा के रखा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, अब आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे? निर्वैराय प्रशांताय स्वस्तु आय स्वस्ताय महात्मने प्रहलादाय यदा ध्रुयेत हन्निष्ये अपि वर उर्जितम। अब आगे चल के भगवान कहेंगे कि जब हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा,
जो कि अत्यंत शांत गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत वध कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं फिर मैं नहीं देखूंगा। जब ये प्रहलाद को सताने लगेगा तब मैं फिर नहीं देखूंगा कि ब्रह्मा ने इसको क्या वर दिए क्या नहीं दिए, मैं नहीं देखूंगा, फिर मैं इसका तुरंत वध कर दूंगा। उससे पहले क्यों नहीं करेंगे? भगवान ने कहा है या क्या कहा है, जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं के प्रति या वेदों के प्रति या गायों के प्रति या ब्राह्मणों के प्रति या वैष्णवों या धार्मिक सिद्धांतों या मुझसे कोई ईर्ष्या करता है, भगवान कहते हैं किससे, या तो भाई देवताओं से कोई ईर्ष्या करता है या गायों से ईर्ष्या करता है, ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता है, वैष्णवों से ईर्ष्या करता है या मुझसे ही कोई ईर्ष्या करता है, तो मैं उसको अविलंब नष्ट कर देता हूं। ये भगवान के वचन है। लेकिन यहां पर भगवान हिरण्यकश्यप को अविलंब विनष्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? भगवान ने कहा कि भाई देखो, मैं तब करूंगा इसका जब ये अपने प्रहलाद पुत्र को जब ये सताएगा तब मैं इसका वध करूंगा। तो इसके पीछे कारण ये है कि उसके पास इतने पुण्य अर्जित हो चुके थे, हिरण्यकश्यपु के पास उतना उसने तपस्या करके इतने पुण्य अर्जित कर लिए थे, चाहे वो ब्रह्मा जी की तपस्या करी है। ब्रह्मा जी भी तीन अवतार हैं, गुड़ अवतार में ब्रह्मा जी भी आते हैं, तो उसकी इतनी गहरी तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी, उसने इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि देवताओं को आतंकित करना, पूरे ब्रह्मांड को आतंकित करना, इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान शांत बैठे हैं, क्योंकि उस खाते में उसके पुण्य कर्मों का फल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। अब भगवान भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने, मेरे पुत्र ने अब गलती कर दी है, तो भैया थोड़ा तो मजा चखो, थोड़ा मजा चखो, बगैर सोचे समझे वर दे दिया। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की गलती को सुधारते हैं। तो भगवान ने कहा कि जब प्रहलाद इसके पुत्र को ये अपना सताएगा तब मैं नहीं देखूंगा, फिर मैं नहीं देखूंगा इसको कितने पुण्य इसके खाते में है कितने नहीं है, वो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैष्णव के चरण कमलों पर, देखिए वैष्णव में शिरोमणि, वैष्णव शिरोमणि है प्रहलाद महाराज, वैष्णव में भी सबसे ऊपर जो शिरोमणि है प्रहलाद महाराज, और जब ये प्रहलाद के प्रति जैसे ही अपराध करेगा, इसके खाते में जितने भी पुण्य हैं वो सब एकदम समाप्त हो जाए, फिर समय नहीं लगेगा। तो वैष्णव के प्रति जब कोई अपराध किया जाता है तो हमारे खाते में जितना भी बैंक बैलेंस है, जितना भी कुछ है, वो एकदम तुरंत नष्ट हो जाता। तो प्रहलाद को जैसे ही उन्होंने पीड़ित करना प्रारंभ किया तो हिरण्यकश्यपु ने जितना भी यश कमाया था, उसने जितना भी पुण्य अर्जित किया था, वो तुरंत नाश हो गया। तो यहां श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी तुलना उस प्रमथ हाथी से की है जो उद्यान में घुसकर अनेक पौधों तथा वृक्षों को उखाड़कर भारी उपद्रव मचा देता है। जैसे हाथी घुस जाता है ना किसी बगीचे में और तहस नहस कर देता है, ऐसे ही वैष्णव के प्रति जब हम अपराध करते हैं तो हमारे सारे पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। यदि कोई किसी ब्राह्मण वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है तो उसके अपराध उसके समस्त पुण्य कर्मों का उच्छेदन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अतः मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध ना हो। यहां पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुए थे, किंतु उसने जो ही अपने पुत्र प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध किया तो उसके सारे वरदान जो हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। सारे वरदान जो भी मिले थे केवल प्रहलाद के चरणों में अपराध करने पे सारे वरदान उसके जीरो। तो यहां पर प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव को निर्वैर अर्थात शत्रु विहीन बतलाया गया। वो ऐसा भक्त था भगवान का जिसका कोई शत्रु नहीं था। भागवतम में भी आता है ना, यहां पर कपिल जो है भगवान बताते हैं, तितिक्ष्वा करुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा, कि साधु के क्या लक्षण होते हैं। अगर साधु के चरणों में अपराध हो जाता है तो साधु के लक्षण क्या होते हैं यह भी पता होना चाहिए। कि वह एक तो सहनशील होता है, सहता है, हर बात को सह जाता है। तितिक्ष्वा, तितिक्ष्वा का मतलब सहनशील होता है, और करुणिका दयालु होता है, सब जीवों के प्रति दयालु होता है वैष्णव। और अजात शत्रुवा, उसका कोई शत्रु नहीं होता जगत में, और शांता, शांत रहता है, और साधवा, साधवा का मतलब कि उसका शास्त्रों का पालन करता है, शास्त्रों के विरोध नहीं जानता, और साधु भूषण उसके सारे गुण जो है अलौकिक होते हैं। तो ऐसे किसी वैष्णव के प्रति, देखिए देवता हैं अपनी जगह ठीक है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो वैष्णव होता है जिसने केवल और केवल भगवान का आश्रय ले रखा है, शरण ले रखी है, उसके प्रति जब प्रहलाद जब अपराध करेगा तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और फिर आगे चल करके आप देखोगे हिरण्यकश्यपु का किस प्रकार से वध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज ये थोड़ी सी हमने चर्चा करी है। तो हमारे पास 5 मिनट का समय है, तो अगर आप लोगों में से कोई आज के विषय पे कुछ चर्चा करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ और इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहता है तो उसका स्वागत है। जी शिवजी भी हैं, प्रहलाद भी हैं, प्रहलाद भी भक्तों में सबसे शिरोमणि हैं। शिवजी से ऊपर नहीं है तो बराबर समझ लो, बराबर तो समझ तक से ना, उसमें कोई दोष नहीं है। वैष्णवानाम यथाशंभो ठीक है, लेकिन प्रहलाद भी वैष्णव में वैष्णव के मुकुट हैं, शिरोमणि हैं। तो 12 महाजन में शिवजी भी आते हैं और प्रहलाद भी आते हैं। इस प्रकार से तो अगर वैष्णव के प्रति कोई अपराध होता है तो फिर हमारा जो भी खाते में कुछ वो हमने जमा किया है वो सब नाश हो जाता है, और यही कार्य अभी होने वाला है हिरण्यकश्यपु के साथ। हाँ जी, शिशुपाल को देखिए भगवान ने मारा, लेकिन शिशुपाल ने किसके प्रति अपराध किया था? भगवान के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति नहीं है। या नरोत्तम दास ठाकुर की ये प्रार्थना है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थान अपराधे नाही परित्राण। अगर हरि के नाम में अपराध कर दिया तो हरि नाम से तर जाओगे, लेकिन भक्त के अगर चरणों में अपराध कर दिया तो फिर कोई, तो शिशुपाल ने तो भगवान के चरणों में अपराध किया तो भगवान ने उसको तार दिया। हाँ, कहा था कि भाई कर दूंगा, ठीक है, कई दफा बच्चों के साथ खेलने का मन करता है ना पिता का, खेलो, तो खेल रहे थे भगवान। ठीक है, और किसी के कुछ बोलना चाहते हैं जी? समझा नहीं मैं क्या कह रहा
हूं।
जब वैष्णव अपराध करते, वैष्णव जब अपराध करते हैं ये अभी गुण बताए ना आपको, साधु के लक्षण क्या है, साधु के लक्षण इनको समझना है कि सबसे पहले वो सहनशील होता है, सहन करता है, सहन करना है, और फिर क्या होता है, फिर कारुणिका। तो इस प्रकार से लक्षण है, आप देख सकते हैं 3:25-21 में, इसको घर जाकर के देख सकते हैं। तो जी मेरे को समझ में आप यहां आकर के कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। प्लीज आइए, दो एक मिनट के लिए, हम चाहते हैं एक मिनट के लिए आप आएंगे। मधुआ प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज आइए आइए आइए। वायरलेस दे दीजिए, वायरलेस दे दीजिए। वैष्णव जन क्षमा कर देते। देखिए वैष्णव की जो चरण धूली है वो क्षमा नहीं। देखिए वैष्णव जन तो पहले अपराध अपने ऊपर लेते हैं, ये है कि वैष्णव जो हैं वो कभी अपराध लेते नहीं हैं, लेकिन जो उनकी चरण धूली है वो कभी क्षमा नहीं करती है। तो इसीलिए जब वैष्णव चलते भी है ना, तो वैष्णव से पहले वैष्णव की चरण धूली जो है कृपा के रूप में आगे चलती है, कृपा के रूप में वो आगे चलेगी। और क्षमा के रूप में जो है वैष्णव तो नहीं लेते, लेकिन वैष्णव धूली जो है वो कभी क्षमा नहीं करती। अगर कभी ऐसा हो जाता है, हमारा किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है, तो सबसे बेहतर तो ये है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे हम क्षमा मांग लें, सबसे उत्तम तो यह है। अगर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा अगर संभव नहीं है, तो फिर उन्हीं के समकक्ष जो वैष्णव हैं उनकी जाकर के हमें सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए, तो भी जो है वो वैष्णव अपराध से हमको मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की ताई गोट प्रेमानंद है, शिला प्रभुपाद की।